मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 21 मार्च 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक जिन विषयों पर मैं आपसे बातचीत करता रहा हूं, जहां हम एक टॉपिक लेते हैं और उसकी बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, मुझे लगा कि कई टॉपिक लिए जा चुके हैं और अब मुझे थोड़ा सा इस विषय पर बात करना चाहिए कि उत्तर कैसे लिखा जाए। मैं यहां स्पष्ट कर दूं फ्रेंड्स कि जो मैं उत्तर लेखन की बात कर रहा हूं, जिसे आप आंसर राइटिंग कहते हैं, उसके तहत मैंने जानबूझ करके ऐसे ही प्रश्नों को चुना है। अभी मैं आपसे बात करूंगा जो दिखने में बड़े सरल सहज लगते हैं और जिनका संबंध भी इसी तरह के सरल सहज टॉपिक्स से है जिनकी चर्चा मैं अभी तक करता रहा हूं। तो ऊपर से दिखने पर तो ये बहुत सरल लगते हैं, लेकिन वो उतने सरल होते नहीं है। जब हम इनके उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो इनमें अगर हम सोचेंगे, गहराई में जाएंगे, तब हमें जटिलता दिखाई देंगी। अदरवाइज तो लगता है कि बातें बहुत सरल है, बहुत ही आसान है और हम लिखना भी शुरू कर देते हैं और इनफैक्ट यही हम गच्चा भी खा जाते हैं, जिसके बारे में मैं लगातार आप सबको सतर्क करता रहा हूं। दूसरी बात एक और भी मेरे दिमाग में थी फ्रेंड्स की, लगातार आप लोग अपने ईमेल के जरिए ये मुझे कहते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर जो आप वीकली क्वेश्चन देते हैं, इन वीकली क्वेश्चंस को लिखा कैसे जाए, इसके बारे में भी तो कुछ बताइए, ताकि जो हम लिख रहे हैं, जो लिख लेते हैं, उन्हें चेक कर सकें कि हमने सही रूप में लिखा है या नहीं लिखा है। मित्रों, मैं एक सफाई देना चाहूंगा, देखिए वो काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो मैं ही तैयार करता हूं, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करता हूं जिनमें मुझे लगता है कि नहीं, इन पर अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको उनके आंसर अवेलेबल नहीं करा सकता, लेकिन मैं कराता नहीं हूं दोस्तों। वो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये बात मेरी अच्छी नहीं लगेगी और आप मेरी इस बात से सहमत भी नहीं होंगे, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा करता हूं और उसका कारण यह है कि मैं आपके दिमाग को ब्लॉक नहीं करना चाहता। क्योंकि जो उत्तर लेखन होता है दोस्तों, देखिए उसका फॉर्मेट तो लगभग एक ही है। अगर हाथी के बारे में पूछा गया है तो आप घोड़े के बारे में नहीं लिख सकते, राइट? लेकिन जब हाथी के बारे में पूछा गया है और जब पूछा जाता है, खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। देखिए, जब स्ट्रेट क्वेश्चन होता है, इसकी विशेषताएं बताइए, इसके गुण दोष बताइए, तो अब उसमें तो ज्यादा गुंजाइश नहीं, आपको उसकी विशेषताएं बतानी होंगी और गुण दोष बताने होंगे। लेकिन जो सिविल सर्विस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिखने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग होते भी हैं और सब अपने अपने ढंग से उसे लिखते हैं। मैं ये मानकर चलता हूं और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हो सकता है कि मैं जो आपको उत्तर बताऊं, आप उससे ज्यादा अच्छा उत्तर लिखने की स्थिति में हों, आप लिख लें। लेकिन चूंकि मैंने बता दिया है, तो आप अनजाने में ही कुछ, या कह लीजिए कि कुछ एक नैतिक या एकेडमिक दबाव होता है कि आप मेरे ही उत्तर को सर्वोत्तम उत्तर मानेंगे और इस तरीके से आप अपने सर्वोत्तम को खारिज कर देंगे। दूसरी प्रॉब्लम यह भी होगी कि अगर मैंने आपको उत्तर प्रोवाइड कर दिया, तो आपके दिमाग में जो फैलाव होना चाहिए, उत्तर के बारे में जो तरह तरह के रास्ते उभरने चाहिए, वे उभरने बंद हो जाएंगे। इसका मतलब होगा कि मैं ये मान के चलता हूं कि मैंने आपके साथ अन्याय कर दिया, मैंने आपके दिमाग की जो उपजाऊ जमीन थी उसके उपजाऊपने को खत्म कर दिया। तो मित्रों, फिलहाल तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मेरी इस बात पर थोड़ी सी सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए, व्यावहारिक दृष्टि से सोचिए, तो शायद आपको लगे कि नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं बहुत गलत तो नहीं है। ये बात जरूर है कि मेरी यह बात आपके लिए असुविधा पैदा कर देती है, ये जरूर है, लेकिन इसके लिए मित्रों मैं माफी चाहूंगा। फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, चलिए उत्तर कैसे लिखे जाते हैं एक बार एक डेली ऑडियो लेक्चर में इसी पर विस्तार से बात कर ली जाए, फिर आप लोग बताइएगा कि यह आपको कैसा लगा है और यदि आप चाहते हैं कि नहीं आगे भी कभी कभी बीच बीच में और दूसरे पेपर्स के आंसर राइटिंग के बारे में बात कर ली जाए। जैसे दूसरे पेपर का मतलब है कि मान ली हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चंस होते हैं, एथिक्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो इन क्वेश्चंस पर भी बात करना बेहतर होगा। ये आपकी, आप लोगों की जरूरत है, तो आप मुझे सूचित कीजिएगा, मैं उस तरीके से फिर उनसे भी प्रश्न लेकर के, जो ऐसे प्रश्न हो जिन पर बात की जा सकती है, तो आपसे आगे के डेली ऑडियो लेक्चर में उन पर बात कर लूंगा। तो मित्रों, आज के लिए मैंने जो चुना है, डेफिनेटली जो पेपर है वो तो 2017 का ही है, जो हमारा लेटेस्ट पेपर है कह लीजिए, और मैंने जानबूझ करके सेकेंड पेपर को चुना है जनरल स्टडीज के, क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं उसमें ज्यादातर टॉपिक्स सेकेंड पेपर से हैं, और मैंने जानबूझ करके ऐसा किया है मित्रों, इसलिए कि आप जो स्टूडेंट्स के स्कोर होते हैं आप उठा करके देखें तो सेकेंड पेपर में उनके जितने भी जनरल स्टडीज के चार पेपर्स हैं उनमें सबसे कम होते हैं तुलनात्मक दृष्टि से, और उसका कारण यही है कि सरल होते हुए भी वो पेपर कठिन हो जाता है, इसीलिए ज्यादातर टॉपिक्स भी मैंने वहीं से उठाए हैं, और आज जब मैं शुरुआत कर रहा हूं उत्तर लेखन की तो प्रश्न भी मैं यहीं से उठाने जा रहा हूं। राइट फ्रेंड्स, तो आइए अब मैं आपके सामने एक प्रश्न पेश कर रहा हूं, आप इस प्रश्न को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और ध्यान से सुनिएगा, ये कथा वाचन नहीं है, ये कहानी नहीं सुनाई जा रही है ना, थोड़ी सी आपसे गंभीरता की मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इनको सुने, इन पर विचार करें और कई कई बार सुने, तब आपको इसके लेयर्स दिखाई देंगे, अदरवाइज तो ऊपरी चीज दिखाई देगी, फिर बात बनेगी नहीं। राइट, तो मैं आपको एक प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं, तो देखिए कि कितना सरल सा प्रश्न है, आपको न तो समझने में कठिनाई होगी न उत्तर लिखने की शुरुआत करने में कठिनाई होगी, लेकिन सही सही उत्तर लिखने में बहुत कठिनाई होगी। बहुत कठिनाई इसलिए होगी कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए जो आपको पॉइंट्स चाहिए, जो एलिमेंट्स चाहिए, तत्व चाहिए, या कह लीजिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो किसी एक जगह पर आपको नहीं मिलेगा, कि किसी मैगजीन में किसी लेख के रूप में आ गया हो, या किसी अखबार में ही एक जगह पर मिल गया हो, यानी कि चीजें हैं लेकिन वो सब बिखरी बिखरी हुई है, छितराई छितराई हुई है। अब आपके दिमाग में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि परीक्षा हॉल में जहां आप समय के इतने दबाव में काम कर रहे हैं, आपका दिमाग फटाफट जाकर के उन चीजों को कलेक्ट करके आपके लिए ले आए और आपको प्रोवाइड कर दे और आप उत्तर लिख लें, यह इनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है। राइट, तो उस इन चैलेंजेस को भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी जिस प्रश्न को पढ़ रहा हूं मित्रों, आप इस प्रश्न के बारे में जानते हैं, इस टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं, अगर आप अनसॉल्व पेपर कंसल्ट कर रहे होंगे तो आप इस प्रश्न को जानते हैं, इस टॉपिक को भी डेफिनेटली अगर आपको तैयारी करते हुए 6 महीने 8 महीने हो चुके होंगे तो आप इस टॉपिक पर तैयारी भी कर चुके हैं, और इस टॉपिक पर आप लगातार अखबारों में भी पढ़ते रहे हैं, यानी कि अननोन बिल्कुल नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए अच्छा मौका है कि आप अपने दिमाग को टेस्ट करके देखें, इस मायने में कि वो दूर दूर जाकर के भटक करके और फटाफट आपको चीजें मुहैया करा पाता है कि नहीं करा पाता है, और यदि नहीं करा पा रहा है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, और अगर करा पा रहा है तो आपको मेरी बधाई और बहुत बहुत अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी। दोस्तों, अब प्रश्न सुनिए, प्रश्न कितना आसान है। भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए, इस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं फ्रेंड्स। हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस? डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट informal pressure groups have emerged as more powerful than formal pressure groups in recent years? अब आप देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक प्रेशर ग्रुप, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स, और प्रेशर ग्रुप्स आप अपना सिलेबस उठा करके देखिए, तैयारी थोड़ा सा इस तरीके से दोस्तों करना भी चाहिए, है ना, यानी कि हड़बड़ी में ठीक है कर लिया पढ़ लिया, सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करने की आदत डालिए, या अगर प्रेशर ग्रुप्स पर एक क्वेश्चन आया है तो आप सिलेबस में देखिए कि प्रेशर ग्रुप्स आपके टॉप आपके सिलेबस में है या नहीं है, और अगर है तो वो किस रूप में है, तब आप इसके साथ न्याय कर पाएंगे, इस प्रश्न को सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो कैसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे उसे ट्विस्ट करते हैं, कैसे उसे करंट अफेयर्स से जोड़ते हैं, कैसे आपको सिलेबस से हट करके भी थोड़ा सा इधर उधर की चीजें भी पढ़नी चाहिए। ये तभी आपके समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाली चीजें। अब आप देखिए कि प्रेशर ग्रुप आपके सिलेबस में है, ठीक है, आपने तैयारी कर ली। अब यहां आपको जो अपना उत्तर लिखना है उनकी उनका सीमांकन कैसे करेंगे। सीमांकन होता है ना, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसका सीमांकन होता है। ऐसा नहीं कि आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो ठीक है शटल को आप कहीं भी मार दीजिए, आउट हो जाएंगे। फुटबॉल को ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी वो कर दीजिए, आउट हो जाएंगे। हर चीज का सीमांकन होता है ना, तो आपके आंसर का भी तो एक सीमांकन होना चाहिए। अगर आप ठोस और सही आंसर अच्छा आंसर देना चाह रहे हैं तो हर आंसर का आप सीमांकन कीजिए, है ना, डिमार्केशन कीजिए कि नहीं बस यहां तक। तो वो पॉइंट क्या क्या है जो आपके लिए सीमांकन का काम करेंगे। देखिए जो पहला पॉइंट दिया है, राजनीतिक प्रक्रम, जो दबाव समूह है, दबाव समूह किस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस को प्रभावित कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे। देखिए जो दबाव समूह है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रभावित करते हैं, जो दबाव समूह है याद रखिए वो सोसाइटी को भी प्रभावित करते हैं। जैसे इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप, जो खाप पंचायत है वो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप है, वो सोसाइटी को प्रभावित कर रहा है। और दूसरे जो जाति पर आधारित समूह बने हुए हैं जो इनफॉर्मल है वो अपने समाज को प्रभावित करते हैं, अपने सदस्यों को प्रभावित करते हैं। तो जो प्रेशर ग्रुप है वो कई तरह से लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन यहां जो बात कही जा रही है वो है इंडियन पॉलिटिकल प्रेशर, राइट, भारतीय राजनीतिक प्रक्रम। तो ये एक डिमार्केशन हो गया आपका कि आपको सिर्फ भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव की चर्चा करनी है, इससे बियॉन्ड नहीं। अब दूसरा पॉइंट देखिए जो आपका सीमांकन कर रहा है वो है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में ये नेक्स्ट डिमार्केशन पॉइंट, ये आपकी अगली दिशा की लाइन खींच रहा है। हाल के वर्षों में मतलब जो आपकी बातचीत होगी, जो आप उदाहरण देंगे या जो पॉइंट्स आप रखेंगे उनका संबंध करेंट से होना चाहिए। हाल के वर्षों का मतलब है दोस्तों कि जितना भी आप रिसेंट को ले सके, करेंट को ले सके। अब ऐसा नहीं कि वो दो महीने ही हो, छह महीने ही हो, ये दो साल तीन साल तक वो फैलाव हो सकता है, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश होनी चाहिए जितना भी आप नजदीक जा सके। अभी आप एग्जाम लिख रहे हैं तो इसके जितने भी नजदीक, हो सकता है कि 10 दिन पहले की कोई घटना घटी हो, जब इस पेपर को सेट किया गया था उस समय वो घटना नहीं घटी थी, 2 महीने पेपर सेट हो गया था, लेकिन अभी घट चुकी है, 15 दिन पहले घटी है, 3 दिन पहले घटी है। तो जितना भी आप उसके नजदीक जा सके, हाल के वर्षों में, ये एक अगला पॉइंट हो गया। फिर है अनौपचारिक दबाव समूह, याद रखिए कि यहां जो बात की जा रही है वो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स की बात की जा रही है, नॉट फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स। तो यहां आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं और इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं, बहुत क्लियर होना चाहिए। आप किसे फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं? फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स वो हैं जिन्हें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, या यू कह लीजिए कि जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका बकायदे रजिस्ट्रेशन है और बकायदे जो गवर्नमेंट के जो भी थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, हालांकि ये स्वतंत्र होते हैं लेकिन फिर भी चूंकि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उन्हें कुछ एथिक्स, कुछ सिस्टम फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे एक प्रेशर ग्रुप होगा, मान लीजिए कि एक एनजीओ है, तो एनजीओ दोनों तरह के होते हैं, रजिस्टर्ड भी होते हैं, नॉन रजिस्टर्ड भी होते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, तो उनका बकायदे कि आपको चुनाव कराने पड़ेंगे, बैंक में आपका एक अकाउंट होगा, आपको उसका ऑडिट करानी पड़ेगी, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, फिर आप अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। तो ये फॉर्मल ग्रुप हो गया। तो इनफॉर्मल ग्रुप, यहां फॉर्मल ग्रुप की बात नहीं की जा रही है, यानी कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, और इसके बाद यहां आपको इनफॉर्मल ग्रुप्स को लेना है, केवल इनफॉर्मल ग्रुप्स को। यहां फॉर्मल ग्रुप्स की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और याद रखिए कि यहां आपको फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप के अंतर को भी नहीं बताना है। स्टूडेंट ये सब चकमे में पड़ जाते हैं तो पता लगा कि वो सोचते हैं कि यार एक पैरा में थोड़ा सा फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है जरा ये भी बता दिया जाए। नॉट एट ऑल, आप सीधे अपनी बात पर आ जाइए, जिसे आप इनफॉर्मल ग्रुप मान रहे हैं उसकी चर्चा करिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आप इनफॉर्मल ग्रुप और फॉर्मल ग्रुप के अंतर को जानते हैं। उसे अप्रत्यक्ष रूप से बताइए कि मैं जानता हूं, डायरेक्ट नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास शब्द ही कितने हैं, 150 शब्द। 150 शब्द कुछ नहीं होते दोस्तों। एक नेक्स्ट पॉइंट, आपको डिमार्केशन मिल गया। इसके बाद देख रहे हैं, औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं। अब यहां जो उन्होंने कहा है कि औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में, यहां देखिए तुलना शब्द है, तो बीच बीच में कहीं कहीं जहां भी आपको गुंजाइश मिले, संभावना दिखे, थोड़ी सी जो औपचारिक दबाव समूह है उनका उनकी चर्चा कर दीजिए, उदाहरण के तौर पर बस, यानी कि आप बताने लगेंगे कि वो क्यों इस मामले में पीछे रह जा रहे हैं, क्या कारण है थोड़ा सा। और फिर वो बता रहे हैं कि ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा पावरफुल है, कौन से, इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप। अब आपको उनको शक्ति के बारे में बताना है कि वो किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अब जब प्रभावित कर रहे हैं तो फिर आपको अपने दिमाग में लाना पड़ेगा कि किस चीज को प्रभावित कर रहे हैं। याद रखिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस को प्रभावित कर रहे हैं, वो केवल राजनीतिक प्रभाव की चर्चा करनी है बस। अब आपके दिमाग में एक तस्वीर बनेगी, जब आप इन पॉइंट्स को लेकर के सोचेंगे तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनेगी। तस्वीर क्या बनेगी, देखिए जब हम पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, मतलब जो हमारे राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल ही कानून बनाते हैं, राइट, राजनीतिक दल ही वोट मांगने जाते हैं और उन कानून का प्रभाव फिर पड़ता है। तो जो वोट देने वाला समूह है वो क्या है, वो इंडिविजुअल भी है, व्यक्तिगत भी है, उसमें फॉर्मल ग्रुप भी है, इनफॉर्मल ग्रुप भी है। भारत में जो इनफॉर्मल ग्रुप बने हुए हैं वो जाति पर आधारित है, गांव समूहों पर आधारित है, बहुत से ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जो वोट देते हैं। तो वोट देने के बाद जब पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो हमारा वोट बैंक है वो वोट बैंक हमारा कहीं अगले चुनाव तक बिखर न जाए, हम दोबारा उनके पास जाकर के उनसे क्या कहेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर वो जो लेजिस्लेशन लेकर के आते हैं या जो बयान देते हैं या जिन मुद्दों पर वो कुछ भी नहीं बोलते, चुप रहते हैं, लोगों को अलाउ कर लेते हैं करने के लिए, वो किस रूप में करते हैं, इसी रूप में करते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप, क्योंकि ये वोट बैंक उनका है और ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। देखिए एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, इसमें तो थोड़े थोड़े से लोग होते हैं ना, और ये छोटे छोटे ग्रुप में, किसी में 20 है, किसी में 50 है, किसी में 100 है बस। तो ये अगर आपके पक्ष में भी है तो 20-50-100 लोगों को कह देंगे कि भैया चलो इनको वोट दिया जा, वो भी आप नहीं कह सकते उनको। लेकिन ये जो समूह है इनफॉर्मल ग्रुप, ये तो बकायदे कह सकते हैं कि भैया देखो इस बार इसको वोट देना है। और मजेदार बात है कि इनकी लॉयल्टी अपने ग्रुप के प्रति ऐसी होती है कि वो उनकी बात मानते भी हैं और उसी तरीके से मतदान करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप कह लीजिए जो प्रक्रिया है, ये जो घटना है, आपको इसे समझाना है, इसे समझाना है। मित्रों अभी कहीं अगर आप उदाहरण को लेटेस्ट ले ले तो आप देखिए कि पद्मावत फिल्म को लेकर के जो इसका विरोध हुआ है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है और उसके आधार पर आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, आप इसे बता सकते हैं। उस तरह से मैं फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, उनका अपना, मुझे नहीं मालूम है कि उनका अपना रजिस्ट्रेशन है नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जाति पर आधारित एक समूह है, या चलिए अगर आप इसको छोड़ भी दीजिए, थोड़ा सा मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि इनफैक्ट किस तरह का रजिस्ट्रेशन है, फॉर्मल ग्रुप में आएगा या नहीं आएगा। खाप पंचायतों को आप ले लीजिए, खाप पंचायत की बात तो आप कर सकते हैं, और खासकर जब ये क्वेश्चन देखिए बनाया गया होगा तो उसमें उनके दिमाग में खाप पंचायतें ही ज्यादा रही होंगी, है ना। पद्मावत फिल्म तो इस एग्जामिनेशन के बहुत बाद की बात है, तो आप पद्मावत फिल्म के विरोध को हटा दीजिए, आप खाप पंचायत के उस समय की घटना को, किसी को घटना को लेकर के आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक प्रश्न की चर्चा आपसे की है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली जब आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो उत्तर लिखने के मामले में आपकी क्षमता में कुछ न कुछ इजाफा जरूर होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही अब मैं इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।